ओम शांति, ओम शांति। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि साकार बाबा की पालना लिए हुए हमारे आदरणीय मोहन भाई साहब हम सबके बीच में पहुंचे हैं। तो सभी जन एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे। बहुत सारे भाई बहने भाई साहब को जानते होंगे, कौन कौन जानते थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। बहुत थोड़े जन, आधे जन जानते आधे नहीं। मैं उनका संक्षिप्त, भाई साहब अभी जलगांव और बवाना, जलगांव और बवाना की भट्टी चालू है, कल ही उद्घाटन हुआ दिल्ली के पास। तो साकार बाबा की पालना लिए हुए मधुबन के बगिया के फूल अमूल्य रतन आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब, इनका मैं आपको संक्षिप्त में परिचय कराना चाहूंगी। भाई साहब का जन्म 1946 में देहरादून में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में आप ONGC में प्राइमरी पब्लिक सेक्टर ऑयल ऑर्गेनाइजेशन में आप सेवारत रहे, जो गैस और ऑयल का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करती है। ऐसे कंपनी में भाई साहब ने 28 साल तक अपनी सेवाएं दी, पूरे भारत भर में भ्रमण करते हुए। ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जब भाई साहब पढ़ाई कर रहे थे तो 1962 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आए और बाबा का ज्ञान बहुत ही गहराई से स्टडी किया। और पढ़ाई करते करते उसके बाद जॉब करते करते बंगाल, बिहार में, गुजरात में, आसाम में बहुत जगह बाबा के सेंटर्स खोलने के आप निमित्त बने। बाबा ने आपको निमित्त बना के बहुत जगह सेवा कराई। फिर 28 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अपन जो ज्ञान सरोवर है, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वहां आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1996 से लेकर जो एकेडमी कोऑर्डिनेटर है वो कार्यभार संभालते भाई साहब। और वैसे भाई साहब बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत सारे इस पर उनका कमांड भी है। अपना जो 18 प्रभाग है उसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर प्रभाग के आप चेयरपर्सन है। आपके नेतृत्व में बहुत सारी सेवाएं हुई है। जैसे 1995 में इंटरनेशनल यूथ ईयर था तब 12 पद यात्राएं भाई साहब के कुशल नेतृत्व में पूरे भारत भर में निकली थी। और इंजीनियर और साइंटिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन होने के नाते पूरे भारत भर में जो आज का इश्यू है पर्यावरण जागृति, तो पर्यावरण जागृति अभियान भी अलग अलग 7 राज्यों में आपने चलाए हैं। तो हम सबका भी परम सौभाग्य रहा, मेरा भी, कि जलगांव से लेकर कोल्हापुर का एक अभियान निकाला था, उसमें भाई साहब के साथ हम थे। कैसे आज एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है तो लोगों के अंदर जागृति लाना बहुत ही जरूरी है। तो पूरे भारत भर में, नेपाल में, अलग अलग जगह अभियान निकाले गए पर्यावरण की सेवाओं को देखते हुए। भाई साहब को पर्यावरण श्री के अवार्ड से 92 में नवाजा गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी आपने बहुत लोगों को माना इंस्पायर किया है, बहुत अलग अलग सेवाएं की है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की सेवाओं को देखते हुए खास जो कंपनी के अंदर ये एक डिपार्टमेंट रहता है कि जो भी वहां लोग रहते हैं उनका पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें भाई साहब का खास रोल रहता है। उनकी डेवलपमेंट की सेवाओं में अलग अलग कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो उनकी सेवाओं को देखते हुए इंटरनेशनल अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस के एंड कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर एडल्ट इन 2004 में ऐसे भाई साहब को अवार्ड से नवाजा गया। पूरे भारत भर, तो क्या विदेशों में, US कहो, UK कहो, बांग्लादेश और नेपाल में भाई साहब ने अपनी सेवाएं दी है, बाबा के अनुभव आप उनके सुनेंगे। हाँ, तो जैसे हम उनके खो जाते हैं 18 जनवरी को जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, वो मुरली सुनते हैं, तो भाई साहब के अनुभव में हम सुनते हैं कि वो जो मुरली बाबा ने चलाई थी लास्ट के, जो उनके 3 शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये भाई साहब के जो भी सवाल थे, कैसे बाबा ने उनके जवाब दिए, बहुत ही मिलनसार। बाबा के अनन्य रतन हम सबके बीच में है, हम सभी भट्टी में आए हैं, हम सभी परिवर्तन चाहते हैं, भट्टी माना ही परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन का आधार है महसूसता की शक्ति। तो इस पर भाई साहब आज प्रकाश डालेंगे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रकाश। ओम शांति।
ओम शांति। सबसे पहले तो हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि आने में विलंब हुआ। आज मौसम बाहर देख ही रहे हैं, एकदम बहुत ही विजिबिलिटी जो है थोड़ा यहाँ से जितना सोफा इससे आगे दिखाई ही नहीं देता है। तो ताबू रोड से माउंट आबू तो पहुंच गए, कितने बजे? 10 बजे लगभग। लेकिन वहां से यहाँ तक आने में आप समझो कितना टाइम, क्योंकि आज संडे का दिन है, ट्रैफिक भी बहुत होता है। ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं ना, हम लोग भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो बाहर का ट्रैफिक सैटरडे संडे को माउंट आबू में टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से एक ग्रुप जाने वालों का होता है, फिर एक ग्रुप आने वालों का होता है, तो बहुत ट्रैफिक, एक तो वो भी जाम होता है और विजिबिलिटी भी बहुत पुअर है। तो ये ट्रैफिक में आते आते हम सोच रहे थे, ट्रैफिक तो है ही, लेकिन ट्रैफिक को टेरिफिक बन जाता है। ये टेरिफिक माने अंग्रेजी में बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, टेरिफिक कंट्रोल। ट्रैफिक जो है सारा विचारों का, क्योंकि ट्रैफिक जब जाम हो जाता है चीज आगे मूव नहीं करती। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हमारे विचारों का ट्रैफिक भी ना बहुत जाम हो जाता है। कोई घटना होती है, कोई बात जीवन की होती है, किसी ने कोई तिरस्कार किया, अपमान किया, या कहीं पर असंतुष्टता है कोई बात, तो विचारों का ट्रैफिक एकदम जाम हो जाता है, आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। तो इसीलिए विचारों का ट्रैफिक हमारा जाम ना हो, उसके लिए एक ये आवश्यकता है कि विजिबिलिटी साफ रहे, देखने का आगे। अगर जैसे आज विजिबिलिटी ही पुअर है, जब दिख ही नहीं रहा है तो आगे चलेंगे क्या? तो ऐसे ही हमारा जो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, विजिबिलिटी साफ होनी चाहिए, दिखना चाहिए, और उसी को ही बाबा महसूसता की शक्ति कह देते हैं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो हम चलते हैं और चल रहे हैं और लगता है बहुत ठीक भी है, अमृत वेला भी करते हैं, क्लास भी करते हैं, सेवा के चांस मिलते हैं, सेवा भी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करो और बाबा जो हमने अल्टीमेट लक्ष्य दिया है यहाँ पहुंचना है, और देखते हैं वर्तमान में कहाँ तक पहुंचे हैं, तो लगता है अभी काफी लक्ष्य बाकी है हासिल करना, मंजिल अभी उतने पास नहीं है जितना पास समय है। समय कम है, मंजिल थोड़ी उतनी पास नहीं है। तो इस कारण से उसके लिए जितनी विजिबिलिटी, जितनी हमारा माइंड में ट्रैफिक का जाम नहीं होगा, विचारों का विजिबिलिटी, दूर दृष्टा होकर के हम चलते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए सब होते हुए भी जब कभी भट्टियों में आते हैं हम लोग जाते हैं, तो जब डीपली रियलाइज करते हैं, जब बहनें कहते हैं बाबा के कमरे में जाके पत्र लिखो, आज सखा के रूप में लिखो, आज दिल की बात पूरा खोल के लिखो, तो जब ऐसे टाइम मिलता है और जितना हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अंतर झांकते हैं जितना, तब पता चलता है कि अभी तो ना वो, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है कि हमारे सामने दर्पण जैसे स्पष्ट हो जाता है। दर्पण होता है ना, जब साफ दर्पण में दिखता है तब पता चलता है कहाँ क्या दाग है, कहाँ कैसे ठीक करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी ना, जब मधुबन में इतनी पावन भूमि में, भगवान की चरित्र भूमि में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम अपना दर्पण साफ जब अपने अंदर देखते हैं तो पता चलता है। तो वो दर्पण में क्या देखना है, जैसे आज का विषय है महसूसता की शक्ति के द्वारा परिवर्तन। तो पहली जो है महसूसता, किस चीज की महसूसता, तो बाबा ने बताई है दो बातों की महसूसता। एक है अपनी कमी और कमजोरी की महसूसता, जब बिल्कुल न्यूट्रल होके अपने को झांकते हैं तब पता चलता है ये विकार तो हमने कंट्रोल कर लिए, लेकिन इस बात पर अभी तक भी मेरा पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया है। हर एक का अपना अपना है। तो जब देखते हैं तब फिर कहते हैं बाबा अब मैंने तो अपनी शक्ति से कर लिया, अब आपको डबल इंजन बन करके बस मुझे ये मेरी कमी को पूरा करना है, निकालना है। सच्चे दिल से बाबा से अपनी कमी और कमजोरी की महसूसता जब होने लगती है ना, तो अगर हम दिल से बाबा के सम्मुख कह देते हैं तो दिलाराम की आशीर्वाद मिल जाती है, दिल से कहा। और अगर कई बार ये कहा, चलो बहन जी ने कहा है पत्र लिख दो, चलो बाबा के कमरे में बैठो, चलो एकांत में जाके करना तो है ही है, वो कर लेते हैं, तो फिर जैसे कि हम अपने विवेक का खून कर देते हैं। अंतरात्मा तो कहती है ये कमी है कमजोरी है, इसको दूर करना है, लेकिन हमारा अहम, हमारा इतना समय का ज्ञान कि अरे हमें तो 25 साल हो गए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम तो इतना इंचार्ज हैं, ये है, तो उससे क्या होता है, फिर हम कई बार हमारे विवेक का खून कर देते हैं। अंतरात्मा कहती है लेकिन उस बात को हम टाल देते हैं, ये तो चलता ही है, होता ही है। और ऐसा करके जब अपने विवेक का खून कर देते हैं तो फिर सच्ची महसूसता नहीं हो पाती, और जब महसूसता नहीं होती है तो परिवर्तन भी नहीं हो पाता। इसलिए यदि हम सब आए हैं और चाहते भी हैं परिवर्तन करना, तभी तो आए हैं, इतना दूर समय निकाल के टिकट लेके यहाँ पर इतना टाइम जो निकाल रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं। जहां तक पहुंचे हैं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, लेकिन अभी उससे और आगे बढ़ना है। और जब चढ़ाई होती है ना, तो चढ़ाई होती है तब बाबा कहते हैं ना क्या होता है, फिर डबल इंजन लगाते हैं। ट्रेन में भी ना, जब अगर शिमला जाओ या और कहीं ऊपर जाओ तो डबल आगे भी इंजन पीछे भी, तो ज्यादा पावर से वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे ही अभी तक हम लोगों ने अपनी और बाबा की शक्ति से करा तो है, लेकिन जब सच्चे दिल से बाबा से कह देते हैं तो बस बाबा जो है बंधा हुआ है हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो एक तो अपनी कमी या कमजोरी की महसूसता, और दूसरी है दूसरे की कमी कमजोरी या उसके बेचारा परवश है, परवश स्थिति की महसूसता, दूसरे व्यक्ति की परवश स्थिति की महसूसता। तो ये जब परवश स्थिति का भी एहसास हो जाता है, वो भी चाहता है परिवर्तन करना लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाता, और जब हम देखते हैं कि अरे इतने साल इसे हो गए परिवर्तन नहीं हुआ, तो मेरा क्या, मैं तो उसकी तुलना में 5-10 साल जूनियर हूं। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी सबसे पहली बात है महसूसता, अपने अंदर एक महसूसता की शक्ति हो, ये रियलाइजेशन हो कि हाँ जरूर अभी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ नहीं हासिल हो पाता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो मेरे अप्रोच में गलती है, जो मैं मार्ग पर हूँ उसमें थोड़ा स्पीड कम है, या तो या मार्ग में कहीं बाई प्लॉट्स हैं उनमें मेरी गाड़ी चली गई है, जो मेन हाईवे है उसको मैंने छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके अंदर मैं आत्मा जरूर, उसका रियलाइजेशन नहीं होता है, ऊपर से देखने में तो आता है सब ठीक है। तो पहली सूक्ष्म शक्ति की आवश्यकता है महसूसता की शक्ति, और फिर जितनी महसूसता होती जाती है उसका प्रमाण क्या है, परिवर्तन। दूसरी सूक्ष्म शक्ति है परिवर्तन की शक्ति। जब परिवर्तन रिजल्ट होता है, इसका मतलब आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है जिधर से चल रहे हैं वो ठीक है। मानो बुखार आ गया शरीर में, बुखार में डॉक्टर की दवाई करी, ठीक नहीं हुआ, दूसरे की करी, बहुत कर लिया, नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा लाइन ऑफ एक्शन ठीक नहीं है, बीमारी पकड़ में नहीं आई। और फिर कोई मिलता है अच्छा डॉक्टर, उससे की दवाई ली और अगर ठीक हो गए, इसका मतलब वो लाइन ऑफ एक्शन भी, वो भी ठीक था, मार्ग भी ठीक था और रिजल्ट भी ठीक मिल गया। तो अपने रिजल्ट से, डे टू डे रिजल्ट से हमें अपने को चेक करना है कि मैं कितना गलत हूं या सही हूं, तो वो परिवर्तन की शक्ति है। और परिवर्तन की शक्ति का जो आधार है ना, एक उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है, हम केवल अपने को देखें, दूसरे को ना देखें। मैं अर्जुन हूं, बाबा आया है ज्ञान सुनाने, ठीक है दुनिया को सुना रहा है, लेकिन भगवान मेरे लिए ही आया है और मेरा परिवर्तन बाबा चाहता है, तो मैं अर्जुन हूं। तो इसीलिए जब ये परिवर्तन के लिए हमारा एटीट्यूड हो जाता है, तो क्या होता है, जब अपने को ही हम देखते हैं, दूसरे को ना देखें, तो तब हमारा रियल परिवर्तन शुरू हो जाता है, सूक्ष्म परिवर्तन अंदर से वो चलने लगता है। तो सूक्ष्म परिवर्तन में भी क्या चेक करें, कोई कोई चीजें होती है ना, चेक करते हैं वो हो गया कि नहीं। माताएं भी घर में खाना पकाते हैं, चावल पकाया मानो रखा, अब एक निकाल के देख लेंगे थोड़ा सा कि हाँ पक गया, इसका मतलब सारा पक गया। ऐसे ही बीच बीच में हमें अपना ऑडिट करना चाहिए, अपनी बीच बीच में चेकिंग करनी चाहिए कि क्या वास्तव में मैं मंजिल की तरफ ठीक तरफ से बढ़ रही हूँ आत्मा। इवन मंगल ग्रह पर और चंद्र ग्रह पर भी यान भेजते हैं ना, आजकल भारत के भी यान गए हुए हैं, तो जरूरत पड़ती है कहीं यूं जाना चाहिए और रास्ता भटक गया तो फिर करेक्शन करके फिर उसकी डायरेक्शन को मोड़ देते हैं, जिससे कि वो राइट डायरेक्शन है। तो बीच बीच में करेक्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हाँ ये देखना चाहिए, नहीं तो हम समझते हैं कि हम तो ठीक उस पर चल रहे हैं, लौकिक रीति से इसे इस रीति से किसी ने कहा है हाँ? कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। बात सिंपल है, लेकिन धूल चेहरे पर आईना, यानी कि दूसरे को हम दोष देते रहते हैं, देखो आईने में धूल है, ये नहीं मालूम कि एक्चुअली हमारे चेहरे में ही वो दाग है, आईना तो साफ है। तो जब हम दूसरे को देखते हैं और तब हमें अपना कमी कमजोरी पता नहीं चलती, इसीलिए इसमें कहा है कि अपने को देखते चलो, दूसरे को नहीं देखो। तो इसमें क्या क्या चीज करने, क्योंकि अल्टीमेटली जहां हमें पहुंचना है, तो सबसे पहली सूक्ष्म चीज है, बाबा भी आके किन चीजों का परिवर्तन कराते हैं, सबसे पहले है स्मृति का परिवर्तन। पहले हमारे ये थे कि मैं देह हूं, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तो ये जो है स्मृति, इसको बाबा भुला के क्या स्मृति का परिवर्तन करते हैं, मैं आत्मा हूं। तो बस पहला परिवर्तन ये आवश्यक है, बाबा स्मृति का परिवर्तन कराते हैं। तो मोटे तौर पर तो स्मृति का परिवर्तन हो गया हमारा, लेकिन जो दूसरी और चीज है वृत्ति का परिवर्तन। स्मृति के बाद वृत्ति, स्मृति तो कॉन्शियसनेस है, जागृति है, हम जागरूक अवस्था में बैठे हैं, कोई भी पूछेगा तो बता देंगे सोते से उठ के भी कि भाई मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं आदि आदि। लेकिन वृत्ति जो है वो ही सब कॉन्शियस माइंड है, सूक्ष्म हमारा मस्तिष्क है। और वृत्ति के अंदर ही ना क्या होता है, जब ये बात घुस जाती है अंदर, तो आवश्यकता ये है वृत्ति का परिवर्तन करना। और जितनी वृत्ति हमारी धीरे धीरे, स्मृति पहले कॉन्शियस वृत्ति से हो गया, फिर वृत्ति अभ्यास करते 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 करते, देखो अभी ऑटोमेटिक अभ्यास हो गया, मैं समझता हूँ ज्यादातर का अभ्यास हो गया होगा। जैसी बस नींद खुलती है क्या मुंह से निकलता है, गुड मॉर्निंग बाबा, है ना, अपने आप ही। भले कॉन्शियस माइंड उतना जागरूक न भी हो, कॉन्शियस अटेंटिव न भी हो, लेकिन इस वृत्ति के अंदर घुस गया, बाबा ने कहा उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग। कई संस्कार ऐसे हैं प्रैक्टिस करते करते अपने आप वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से वृत्ति के अंदर जब हो जाता है, और क्योंकि ये वृत्ति का दोष हम लोगों की पेरी है, हम बचपन से ना हम लोगों ने अपने को ये सीख लिया कि बस मैं सही हूं और दूसरा गलत है। माता यहाँ बैठी है ना, देखा होगा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा है, बस पहले जब बच्चा होता है बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, थोड़ा बड़ा हुआ दूसरे के पास भी जाता है, चलना सीखता है तो दो हाथ दो पैर से, और फिर खड़ा होके जब चलता है तो थोड़ा चला गिर जाता है, फिर माता उठा देती है, फिर थोड़ा चलना, ऐसे धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो आपने देखा होगा जब बच्चा चलता है और थोड़ा कंट्रोल नहीं होता, तेजी से चलता गिर जाता है, थोड़ा बच्चा तो कोमल है धरती से लगा, हाँ तो माँ क्या करती है, धरती को थोड़ा यूं करती है, बच्चा भी देखता है, रो रहा होता है, जब माँ यूं करती है तो समझता है कि भाई हाँ ये धरती की गलती है, पृथ्वी की गलती है, मेरी गलती नहीं, मैं तो अपना ठीक चल रहा था। तो बचपन से हमने उसके माइंड में ये संस्कार डाल दिया कि तुम सही हो हमेशा, दूसरा ही गलत है। और वो संस्कार हम आज तक लेते चले आते हैं, ज्ञान मार्ग में भी जब देखते हैं, अरे फलाने ने ये बोला तो मुझे क्रोध आ गया, मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, फलाने ने झूठ बोला, मैं झूठ नहीं सहन कर सकता या कर सकती, तो मैंने उसे इतने हार्श वर्ड बोल दिए। तो हम दूसरे को ब्लेम जो करते हैं और अपने को नहीं करते, तो ये हमारे मार्ग में परिवर्तन में काफी हद तक बाधा बन जाता है। तो इसीलिए ये वृत्ति का परिवर्तन, क्योंकि ये वृत्त से वृत्ति बनता है, वृत्त माने सर्किल, तो संकल्प से कृति तक, वृत्ति से स्मृति से कृति तक की यात्रा, संकल्प से कर्म तक की यात्रा, और उसके अंदर ये वृत्ति संकल्प से भी जो सूक्ष्म चीज है ना वो है सबकॉन्शियस माइंड। और इस कारण से ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही पुराने जन्मों के पूरा संस्कार छुपे रहते हैं। कॉन्शियस माइंड में तो इस जन्म के संस्कार है, कोई भी काम किया है, गलत किया है, भूल की है, अच्छा बात की है, वो कॉन्शियस माइंड में है, कभी भी उसे निकाल सकते हैं। लेकिन पिछले जन्म में या चार जन्म पहले द्वापर युग से तो विकर्मी विकर्म किए हैं आत्मा ने, तो वो अंदर है, वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में तो वो संस्कार है। तो जैसे यहां पर इस जन्म में कोई अनुरूप परिस्थिति निकलती मिलती है तो वो आग जैसे भड़क उठती है, वो संस्कार एकदम जागृत हो जाता है। कई बार कहते हैं अरे न मन न चित, कोई बात ही नहीं थी फिर भी ऐसा कर्म हो गया, फिर भी ये शब्द मुंह से निकल गए, जीवन भर कभी नहीं निकाले लेकिन अभी हो गए। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात अंदर अचेतन अवस्था में, अर्थचेतन अवस्था में बैठी हुई थी, और जैसी उसके अनुरूप वातावरण मिला कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वो भले वो भी दूसरे नाम रूप में है, हम भी दूसरे नाम रूप में पहचानते नहीं, लेकिन इस आत्मा का उस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब है। इसीलिए तो जो आत्माओं का देखो अकाले मृत्यु होती है, समूह मृत्यु होती है, एक प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन गिरा, सब 500 लोग बैठे हैं, सब अलग अलग जगह के हैं, लेकिन मृत्यु एक जगह एक ही टाइम पर एक स्थान पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं के जो कर्मों का हिसाब किताब है वो ऐसा है कि ऐसा एक जगह उनको इस हालत में इस रीति से मरना है। तो इसलिए ये जो है वृत्ति से ये यात्रा, ये स्मृति के बाद वृत्ति का परिवर्तन, इसीलिए सूक्ष्म में हम ये भी चेक वृत्ति को अपनी चेक करते जाए, फिर वृत्ति के बाद दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि वृत्ति तक तो सूक्ष्म हो गए, लेकिन तीसरी बात है दृष्टि का परिवर्तन। परिवर्तन शक्ति विषय है ना, महसूसता के द्वारा परिवर्तन। तो दृष्टि से हम अपने को चेक कर सकते हैं। बाबा भी समय प्रति समय दृष्टि पर बहुत मुरली चलाते हैं, सबको मालूम है। तो लेकिन ये दृष्टि जो है ना, अपनी दृष्टि से हम खुद अपने को चेक कर सकते हैं। बाबा जिसे मोटे तिरोध पर कह देता है क्रिमिनल आई या सिविल आई, लेकिन उसके अंदर भी हम सब चाहते भी हैं कि अगर मानो बची हुई कोई क्रिमिनल आई रह गई है, वो इतनी सिविल आई बन जाए। बाबा ने कहा है कर्मातीत अवस्था या अष्ट रत्नों की क्वालिफिकेशन ही क्या होगी, वो 100% सिविल आई बन गए होंगे। 100 इतना फर्क हो जाता है। सिविल आई कोई 99 भी बना है और कोई 100 बना है, तो 100 वाला अष्टरत्नों में आ गया, दूसरा वाला 16,000 में भी चला गया। तो ये बात कितना फर्क है देखो कि दृष्टि, तो ये दृष्टि का परिवर्तन कैसे हो, तो ये पहले ये समझ लेना चाहिए। इसीलिए बाबा ने अंतिम अवस्था में भी कहा कि अंतिम पेपर्स को भी पार करने के लिए क्या चाहिए, साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए। क्योंकि जब चारों तरफ हाहाकार होगा, अति हलचल होगी, उसके अंदर पास विद ऑनर होने का साधन ही एक है, अति अचल। चारों तरफ हलचल हो लेकिन मेरी स्थिति अति अचल हो, उसके लिए साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टि नहीं का, साक्षी दृष्टा। क्यों? क्योंकि ये दृष्टा बन, साक्षी दृष्टा बनने के लिए पांच बातों का स्पष्टीकरण जरूरी है। दृष्टा, दृष्टा माने आत्मा, आत्मा देखती है। अब ये है दृष्टि, आंख है दृष्टि, ये तो खिड़की है। अब खिड़की में खड़े होकर हम देखें तो खिड़की थोड़ी देख रही है, लेकिन खिड़की में के थ्रू देखने वाला कोई और है चैतन्य। ऐसे ही ये दृष्टि जो है ये खिड़की है इस शरीर की, और इसमें देखने वाला ये दृष्टा है, आत्मा है। तो आत्मा दृष्टा और ये दृष्टि के द्वारा तीसरी चीज है दृश्य। बाहर का जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब दृश्य है। अब मैं दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा ये सारे दृश्य देख रही हूं। तो जब ऐसी स्थिति बिल्कुल हो जाए, जो बाबा कहता है ना कि मैं आत्मा देख रही हूं, मैं बोल रही हूं, इन कर शरीर के द्वारा मैं कर्म कर रही हूं, करण करावन हार बाबा करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूं, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर रही हूं। तो जब दृश्य देखते हैं तो देखो ट्रेन में भी जा रहे होते हैं, दृश्य पास होते रहते हैं, कहीं दृश्य पर अटकते नहीं, अच्छा है बुरा है बस देखा चला जाता है और हम भी आगे चले जाते हैं। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता, जीवन में भी रोज दृश्य आते हैं, कोई ऐसी घटना हो गई कहीं पर वहां गाड़ी अटक जाती है, बार बार उसकी याद आती रहती है। पुराने जमाने में जैसे रिकॉर्ड होता था ना, आजकल तो CD है और प्लेयर्स वगैरह सब कुछ, तो रिकॉर्ड के ऊपर सुई रखते थे और जब थोड़ा रिकॉर्ड कभी कभी पुराना हो जाता था तो बार बार वही आवाज आती थी, तो पुराने लोगों ने देखा होगा ना ऐसा घूमने वाला ग्रामाफोन जो होता था रिकॉर्ड, तो उसके अंदर ना बार बार वही आवाज आती थी, तो इरिटेशन, मतलब वो भले बहुत बढ़िया म्यूजिक भरा हुआ है लेकिन जब अटक जाता है तो उस जगह फिर वो प्लीजिंग नहीं रहता। ऐसी हमारे जीवन रूपी गाड़ी भी कई बार मानो कोई घटना ऐसी हो गई, हमारे प्रिय जन की मृत्यु हो गई, बीमार हो गया, कोई बिछुड़ गया, कोई अनेक अनेक, तो बस बार बार न चाहते भी वो दृश्य याद आता रहेगा, अटक जाती है गाड़ी। तो क्या होता है, वो दृश्य में जब अटक गई ना तो फिर वो जो है ट्रैफिक जाम जैसे हो गया, खत्म। तो एक तीसरी चीज है दृश्य। चौथी चीज है दृष्टिकोण, एटीट्यूड। क्योंकि जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण होगा, वो ही हम उसी रीति से उस चीज को, घटना को देखेंगे। हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा तो कोई नुकसानकारक घटना होगी उसमें भी बाबा ने कहा है कि आप बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता संगम पे, उस बात को ध्यान में रखते हुए बस घटना तो हो गई, अब उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसमें से भी हम अपना कल्याण ढूंढ लेंगे, पॉजिटिविटी। और नेगेटिव वाला होगा वो हर घटना में अकल्याण ही देखेगा। तो चौथी चीज है दृष्टिकोण, और पांचवी चीज है दृष्टांत। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा और जिस रीति से हमने ये पार्ट प्ले किया होगा, दृष्टा बनकर इस दृष्टि के द्वारा जो दृश्य देखे होंगे, जिस दृष्टिकोण से देखे होंगे, वैसा ही इतिहास में हमारा दृष्टांत लिखा जाएगा। और द्वापर युग से लेकर के जितने भी दृष्टांत लिखे गए हैं, संत तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो, चाहे जो भी है, वो सबके जो दृष्टांत है वो मेरे और आपके ही दृष्टांत है उन जन्मों में। क्योंकि हम लोग ना, बाबा ने कहा ज्ञान में भी वो आत्मा आएंगी और वो तीखी जाएंगी जो भक्ति भी जिन्होंने बहुत की हुई होगी, भक्ति की भी चरम सीमा पर पहुंची हुई आत्माएं होंगी, और हम सब ज्ञान में है इसीलिए तो जरूर भक्ति की है, पुराने भक्त हैं, तो इसीलिए वही हमारे दृष्टांत है। हर चीज में हमने भगवान को देखा, अनुभव किया, जो बाबा कहता है सदा समझो मैं तुम्हारा साथी हूं, बस कंबाइंड फॉर्म में रहो, और जब कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा, माया का कभी भी आक्रमण नहीं होगा। चोर लुटेरे भी देखते हैं जब ग्रुप है तो आक्रमण नहीं करेंगे, जब एक अकेला होगा आक्रमण करके उसे लूट लेंगे। तो ये पांच बातें रखनी, ध्यान में रखनी पड़े, कौन सी, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टिकोण और दृष्टांत। हर समय हम सोचें मेरा दृष्टांत, रोज रात को बैठे, आज जो बड़े बड़े भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, आज मेरा क्या दृष्टांत लिखा गया होगा, अच्छी बातें की होंगी, अनुभूति की होंगी, मेरा वो दृष्टांत होगा। कोई कमी कमजोरी रह गई, पुराने संस्कार कोई जागृत हो गया, उनके वशीभूत होके कोई कर्म किया, वैसा संस्कार, वैसा दृष्टांत लिखा जाएगा। तो रोज हम ये समझे कि मैं आज बीता वही नहीं है, कलप कलप के लिए ये भक्ति मार्ग से तो खास जो भी दृष्टांत लिखे जा रहे हैं वो मेरे लिखे जा रहे हैं। तो ये तीसरी बात हो गई दृष्टि, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, और फिर कृति। दृष्टि जैसी होती है वैसी कर्म करता है, कृति हाथ से जब कर्म देखने में आते हैं, तो इसीलिए वो कृति जो है ना कैसी है उस बात के। अब ज्यादातर तो जब से हम लोग ज्ञान में आया, पुराने हो गए, तो स्थूल कर्म तो हमारे सब सुधर गए, बाहर खराब खाना पीना, पिक्चर देखना, कुसंग वगैरह, वो सब तो खत्म हो गए, लेकिन ये सूक्ष्म वाले अभी बाकी है। स्थूल में तो काफी हद तक हमने, बाबा ने भी एक बार बोला था कि बच्चों के एक चीज का तो मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, अब वे गुलजार दादी ध्यान में गए थे तो गुलजार दादी ने बताया था कि बच्चों में जो मेरे बच्चे आए हुए हैं ज्यादातर में विकारी संकल्प तो नहीं चलते, बाबा उसका सर्टिफिकेट देता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो विकारी संकल्पों का तो टाइटल बाबा ने दे दिया और उससे ही हम खुश ना हो जाएं। बाबा ने फिर अगली लाइन में बोला, अभी जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, वो जैसे कि ब्राह्मण बच्चों के लिए विकारी संकल्प के समान है, क्योंकि जैसे संकल्प होते हैं वैसे ही संकल्प से सिद्धि होती है। व्यर्थ संकल्प चलेंगे उतना व्यर्थ गया, समय गया, एनर्जी वेस्ट गई, तो वेस्ट ही हो गया। तो इसी तरीके से कृति, ये सूक्ष्म बात ही हम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो इसीलिए वर्तमान समय जो परिवर्तन की आवश्यकता है, एक परिवर्तन यही है स्मृति वृत्ति और दृष्टि का। तो बाद में तो कृति कर्म भी अपने आप पूरे, कृति के बाद प्रवृत्ति, जो भी हमारी प्रवृत्ति है, ब्राह्मणों की भी प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, जो भी प्रवृत्तियां हैं वो, और अल्टीमेटली सृष्टि, सतयुग के बदलने के हम लोग निमित्त बन जाएंगे। तो बात की तीन चीजें, तो फिर भी स्मृति वृत्ति दृष्टि ये तीन सूक्ष्म चीजें हैं, और इन तीन के बाद जो कृति प्रवृत्ति और सृष्टि, उनका परिवर्तन, जैसी कृति फिर वैसी प्रवृत्ति फिर वैसी ही सृष्टि, तो इनका परिवर्तन ये बहुत आवश्यक है। तो जब ये परिवर्तन भी होता जाता है, देखते हैं तो क्या होता है, महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, और परिवर्तन शक्ति भी मेरी ठीक चल रही है, मैं परिवर्तन होता जा रहा हूँ, उसका आधार क्या है, तीसरी चीज है सूक्ष्म शक्ति है मनन शक्ति। हर मुरली में पिछले काफी समय से बाबा चल रहा है, बच्चे विचार सागर मंथन करो, मनन करो, ज्ञान का मनन करते हैं तो मक्खन निकलता है। जैसे शरीर में ना पाचन क्रिया का महत्व है, ऐसे मन के अंदर मनन शक्ति का महत्व है। अब शरीर है, पाचन तंत्र हमारा कमजोर है, बादाम भी खा रहे हैं, अखरोट भी, सब कुछ खा रहे हैं, फल वगैरह, लेकिन पाचन तंत्र ही अगर वीक है तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, पचेगा ही नहीं, शक्ति नहीं आएगी। ऐसी मनन शक्ति अगर हमारी नहीं है, वो तो अलग विषय है कि कैसे मनन शक्ति को बढ़ाया जाए, लेकिन मोटे तौर पर एक लाइन बोल देते हैं कि मनन शक्ति के लिए बाबा ने बताया, हमारे जो पिक्चर है ना, उनके सामने जाके बैठ जाओ, मानो कल्प वृक्ष के सामने जाके बैठ गए, फिर नीचे से ही शुरू करो, देखो बाबा मामा को देखो, जड़ में बैठे हुए हैं, उनके साथ अष्टरतन भी बैठे हुए हैं, तो बस अपने को विजुअलाइज करो, मैं भी वहां पर बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। घर में अगर चित्र है, अपना चित्र भी काट के वहां लगा दो छोटा। और बाबा कहता नशे की युक्तियां, पहले बाबा नशा कैसे चढ़ाता था बच्चों को, भाई एक नॉर्मल फोटो ये खींचो और एक अपना सब रतन जड़ित वो सब, क्यों, जैसे ही वो देखेंगे नशा चढ़ेगा, मैं ये बनने वाली हूँ। ऐसे ही उसके अंदर मैंने देखा बहुतों को, बस अपना भी, बाबा मैं तो इस सृष्टि की जड़ में, नहीं तो यही सोचते रहेंगे, अरे हम तो कहाँ चाहेंगे, बड़ी दादियां हैं, दीदियां हैं, बड़े भाई हैं, मधुबन में रहने वाले, इधर उधर वो बनेंगे, मैं तो प्रवृत्ति में रहने वाली आत्मा हूँ। नहीं, बाबा ने कहा मेरी माला का एक बहुत बड़ा गुह्य रहस्य क्या है पता है, बड़ा माला का गुह्य रहस्य ये है कि मेरी माला में सब प्रकार के बच्चे है, जो मेरी विजय माला 108, सब प्रकार के बच्चे हैं। कोई यही नहीं कि सारे के सारे जो 1936 में आ गए वही हैं, सारे कुमार हैं या कुमारियां हैं या सारे टीचर हैं, नहीं, मेरी माला में पुराने से पुराने हैं तो नए से नया भी बच्चा है, जो एकदम लास्ट सो फास्ट होके माला का मणका बन गया। मेरी माला में अगर कुमारियां हैं तो अधर कुमारी भी है, माताएं भी है, प्रवृत्ति में रहने वाले भी हैं, जिन्होंने की भले एक हो जाए लेकिन मेरी माला में एक एक सैंपल है। मेरी माला में अधर कुमार है, कुमार है तो अधर कुमार भी है। माला के अंदर निवृत्ति मार्ग वाली जो टीचर है, समर्पित बहने, समर्पित भी हैं, तो प्रवृत्ति में रहने वाले भी हैं। भले रेशो चाहे ज्यादा हो उसमें जो समर्पित हैं, लेकिन एक तो एक हर सैंपल का है। मेरी माला में भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो विदेशी भी हैं। कोई ना कोई ऐसा विदेशी बहुत जो होगा बिल्कुल, लेकिन मैंने तो खुद देखा, हम तो इतने साल से मधुबन में रहते हैं, विदेशी आते हैं इतने डेडिकेटेड सब, ये कार किसके, बाबा की कार, उनके घर में ले जाते हैं जब भी विदेश जाते हैं, चलो बाबा के घर में चलते हैं। हर चीज में उनका यही एक्टिविटी है, ये बाबा का है। पैसा, मकान, मोटर, सब कुछ चीज बहुत एकदम अंदर से डेडिकेशन। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। गवर्नमेंट में भी क्या होता है, कोई सीट होती है ना, गवर्नमेंट जॉब होता है तो रिजर्व होती है, भाई ये शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, होता है कि नहीं ऐसा? तो ऐसे ही बाबा की माला में भी जो माला का लिए एक भी भले सीट हो, ये जरूर कल्प पहले कोई प्रवृत्ति वाला भी ऐसा पुरुषार्थ करके बना है, इसलिए माला हुई है तो उसकी उसमें रिजर्व हो गई है। कुमारियां हैं, कुमार हैं, अगर हरेक का सीट, ये माला की विशेषता है। तो इसीलिए मनन शक्ति पर यह आधार है। जितनी हम अपनी मनन शक्ति बढ़ाते जाएंगे, मन विचार सागर मुरली को इसी ने तो कहते हैं, केवल एक बार क्लास में जाके सुन ली नहीं, उसको पढ़ो कम से कम 3 बार, तो दादियां ही बोलती हैं, हम भी देखते हैं एक बार मुरली सुनते हैं और जब पढ़ते हैं तो पता चलता है अच्छा ये भी पॉइंट थी, इसका मतलब जब सुन रहे थे उस वक्त हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं भाग गई थी, तभी तो वो उस पॉइंट को कैच नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब तक दूसरी कम से कम 3 बार नहीं सुनते या पढ़ते, तब तक वास्तव में हमने देखा कि वो मुरली के ऊपर मनन चिंतन नहीं हो सकता। तो इसीलिए मनन चिंतन, मनन शक्ति, ये तीसरी शक्ति है। और जितनी जितनी मनन शक्ति होती जाएगी, तो चेक करते जाते हैं अपने से, उतनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। चौथी सूक्ष्म शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। अभी देखो जितने टाइम ज्ञान में आए, बैठ भी गए, लाल लाइट भी जल गई, रिकॉर्ड भी बज रहा है और योग करने बैठ गए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मन बिल्कुल उसी में रम गया हो, मन तो भाग जाता है। इसीलिए तो कह देते हैं कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहाँ बैठे हैं, वातावरण भी सब कुछ अनुकूल है, लेकिन कोई भी बात अगर ऐसी है जो अनफिनिश्ड टास्क है, अधूरा है, कहीं पर लगाव है, झुकाव है, कहीं अति घृणा है, कोई भी ऐसे कनेक्टेड चीज है, मन उधर ही भाग जाके रहे। और जहां मन भाग जाएगा, फिर भले स्थूल रीति से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो हमारी कमाई तो हुई नहीं, वो तो समय उतना वेस्ट ही हो गया। इसीलिए ये इन चीजों से चेक करते जाना, ये क्यों बात, ये ऑडिट हो रहा है हमारे मन का, कि इनसे हम चेक करते जाएंगे कि कहां हमने क्या गलती की है, कहां हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक बहुत बहुत सूक्ष्म टॉपिक है, महसूसता की शक्ति से परिवर्तन, यानी परिवर्तन की आवश्यकता है अभी। तो एक ये चौथी सूक्ष्म शक्ति हो गई एकाग्रता की शक्ति, और एकाग्रता की शक्ति जितनी होती जाएगी ना हमारी एकाग्रता, आप तो सब बचपन से एक्सपेरिमेंट किया है, हाँ भाई, अब सूरज की गर्मी होती है, प्लीजेंट है गर्मी, ठीक है, लेकिन सिंपली बीच में बस एक लेंस पकड़ लो, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, क्या आप जानते तो है ना उसे, क्या बस उसे पकड़ा, सूर्य की किरणें एक जगह कन्वर्ज हो जाएंगी और नीचे कागज या कुछ कपड़ा कुछ भी रखा होगा एकदम जल जाएगा। गर्मी वही है, उस गर्मी को हमने कंसंट्रेट कर दिया, किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। और यही तो एकाग्रता है कि हम अपने भले बहुत विचार चारों तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जब चाहें हम अपने विचारों का एकीकरण कर सके, एक जगह उनको ला सके। तो ये चौथी शक्ति हो गई है। उसके बाद जितना ये आती जाएगी, हम महसूस करते जाएंगे हम बाबा के बहुत निकट, बाबा की जो डायरेक्शन है उनको हम कैच करते जा रहे हैं, और वो है सत्यता की शक्ति। पांचवी, क्योंकि भगवान को कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और भगवान को भी वो ही बच्चे प्रिय हैं जो सच्चे हैं। बस सच्चे दिल पर साहब राजी, इसीलिए भगवान ने जो भी हम लोगों को 3 सर्टिफिकेट भी देने की बात कही है ना, उसमें प्रभु प्रिय का सर्टिफिकेट भी वो है, भगवान को प्रिय जो है उनका सर्टिफिकेट क्या होगा, वो सच्चे होंगे। भाई भाषण करते हो ना करते हो, प्रवृत्ति में हो, गृहस्थी में हो, समर्पित हो, कुछ भी है, लेकिन अगर सच्चा दिल नहीं है तो वो नहीं है, और अगर एक बिल्कुल साधारण भी है लेकिन दिल सच्चा और साफ है, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे मेरे सच्चे वो बच्चे ही जान सकते हैं, भगवान भी वो है, तो हम भी जो हैं जैसे हैं वैसे बाबा के सामने अगर प्रत्यक्ष होते हैं ना, तभी कहा है सच्चे दिल पर साहब राजी। और उसकी पहचान क्या होगी, पहचान ये होगी कि वो खुशी में नाचता रहेगा, सच तो बिटो नच कहते हैं ना, बस खुशी में नाचता रहेगा, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। हम बच्चों का है कोई अवसर है बहुत खुशी हो गई, कई बार है खुशी कम हो जाती है, गायब हो जाती है, तो इसीलिए इसमें बाबा अक्सर करके एक भाई का उदाहरण देता था, नाम याद है बेंगलोर का भाई अंगना भाई करके एक होता था, हमने भी देखा है कई साल तक, बहुत उनके कॉन्टेक्ट में आते रहे हैं, हमेशा खुश खुशी में, जैसे उसके पांव धरती पर ही नहीं पड़ते थे। सच तो बिठो नच, तो नाचता रहेगा, और इसीलिए होता क्या है, अब ये नहीं कि अब रहते तो कलयुग में ही है, इसी दुनिया में परिस्थितियां है, प्रवृत्ति है, नौकरी है, धंधा है, उसमें तो सब कलयुग ही मनुष्य ही है, परिस्थितियां भी आती होंगी, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, सब कुछ होता होगा, लेकिन हर परिस्थिति में समान और क्या, सच्ची की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं, उसके भी परिस्थितियां आएंगी, बहुत अंगना भाई की भी परिस्थिति आई, जवान लड़के की डेथ हो गई, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन ये सब होते हुए भी क्या होता है उसके अंदर, कि सच की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं, कभी आई परिस्थिति पानी पर लकीर की तरह आई भी लेकिन चली गई, सत्यता की शक्ति। इसीलिए सच्चा वाला ना, कृष्ण को देखो बांसुरी बजाता हुआ दिखाया, और विपरीत परिस्थिति में नाग के ऊपर भी जो है काली देह में ना, नाग के ऊपर गेंद निकाल के लाए, उसमें भी बांसुरी बजा रहा है खुश, और दूसरी तरफ कृष्ण राम को क्या दिखाया है, वियोगी, पूरी रामायण रोते रोते ही है, मतलब तो वियोग माने रोना, और राम की कहानी रोने की है, कृष्ण की कहानी तो पूरी की पूरी हंसने की है, खुशी की है, तो ये है सत्यता की शक्ति। और सच्चा जो होगा ना वो बिल्कुल जैसे हल्का होगा, और वो तब होगा जब एक छठी शक्ति और होगी आवश्यक है, वो है क्षमा की शक्ति, किसी की बात को दिल में नहीं रखना। होता क्या है, उसने पाप किया, उसने कुछ गलत किया, लेकिन उसका हमें महसूस हो रहा है, हमें हो रहा है देखो ये कैसा है, ये नहीं करना चाहिए उसे, उसके लिए हमारे व्यर्थ संकल्प, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, और जब माफ नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उसकी वो बात हमने अपने दिल में रखी है, वो तो हल्का हो गया या ना हुआ वो उसकी बात है, कर्म उसने किया, लेकिन भारी हम होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी बात को हम दिल में रख रहे हैं। तो इसीलिए किसी की बात को अगर हम क्षमा नहीं कर पाते, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं, जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा कभी, वीर होगा महावीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। हमें बाबा मामा के साथ बाबा के साथ ही 7-8 साल रहने का मौका मिला। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं यज्ञ में हो जाती थी, बात बस सुनी बाबा ने, अच्छा बच्चे चलो ड्रामा, और बस बाबा जो है इतने एकदम जैसे उस आत्मा को माफ कर देते। उसके बाद याद ही नहीं रहती थी कि उसने ये करा उनके व्यवहार से। हम अगर टेम्परेरी माफ भी कर दें, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहेगा, हमारी दृष्टि वृत्ति उस आत्मा के प्रति बदल जाती है जिसने अगर कोई ऐसा विकर्म किया, यज्ञ की मर्यादा के विपरीत कार्य किया या कोई भी ऐसी घटना हो गई। अब बाबा का मामा का तो ऐसा था, और दादियों का हमने देखा, बड़ी दादी के साथ भी इतने साल तक रहने का वो हुआ, बस दादी तो ऐसे भूल जाती थी जैसे वो घटना हुई नहीं है, खत्म हो गए। तो ये क्षमा का भाव ये बहुत चलिए, और जो जितना क्षमा करता जाएगा ना, तो लास्ट के दो पेपर में बिल्कुल पास हो जाएगा। ये सारे पुरुषार्थ के पेपर हैं, और भी आगे एक पेपर है, सातवां आठवां शक्ति जो सूक्ष्म है। छह शक्तियां ये हो गई, याद रही ना कौन कौन सी हैं? पहली से गिनाओ, महसूसता की, परिवर्तन शक्ति, तीसरी मनन शक्ति, चौथी एकाग्रता की शक्ति, पांचवा सत्यता की शक्ति, छठा क्षमा की शक्ति, और सातवीं शक्ति सूक्ष्म जो है ना वो क्या है, और वो क्षमा की शक्ति के बाद वो शक्ति है निर्भयता की शक्ति। निर्भयता, क्योंकि अंत में ना ये निर्भयता बहुत चारों तरफ हाहाकार होगा, चारों तरफ आग ही आग होगी। बाबा ने वैसे भी बताया है चार प्रकार की आग होती है। कौन सी आग? एक है विकार की आग, पहली है विनाश की अग्नि, विनाश चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा, लोग मर रहे हैं, कहीं कोई कट रहा है, कोई हाहाकार है। जो बड़े बुजुर्गों ने भारत का पार्टीशन देखा हुआ है वो तो उसको ही बाबा कहता है, वो तो एक ट्रेलर जैसा था। अभी जो हाहाकार होने हैं, क्योंकि उस समय वो केवल एक ही प्रकार का विनाश का दृश्य था, सिविल वार का, हिंदू मुस्लिम का ज्यादातर। और अभी बाबा ने जो साक्षात्कार किया उसमें कितने प्रकार के विनाश के साधन बताए हैं? तीन प्रकार के। एक तरफ तो ये सिविल वार है, दूसरी तरफ एटॉमिक वार है। चारों तरफ जैसे एक अभी ही अगस्त में ही तो हुआ, तीन दिन पहले ही तो वो हिरोशिमा और नागासाकी का डे हुआ। एक बम हिरोशिमा का गिराया, 80,000 लोग मर गए एक बम से, और वो तो इतना छोटा बम था, उसे नाम ही उसका था बेबी बम। उससे जब इतना हुआ, अभी तो उससे हजारों गुना कैपेसिटी के इतने बड़े बड़े कि इस पूरी पृथ्वी का 400 बार विनाश हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। इतने सारे साधन मौजूद हैं। तो एक तरफ तो होगी विनाश की अग्नि, उसके लिए क्या साधन चाहिए? निर्भयता। बाबा कहता है मजबूत दिल वाले ही देख सकेंगे विनाश, कमजोर दिल वालों का तो क्या होगा? हार्ट फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हार्ट फेल होना तो वैसे बड़ी अच्छी मृत्यु बाबा ने बताई है ना? बाबा भी उसमें, क्योंकि बस आया परवाना बना बहाना, ना पड़े रहे बिस्तर पर, ना कोई सेवाएं ली, और बस गए। जाना तो ही है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे न जाना हो, लेकिन ये जाने का बाबा का भी है। हमें याद है जब बाबा यहाँ, वो तो अभी समय नहीं तो सुनाते, 18 जनवरी का आंखों देखा हाल, जो हमने देखा किस प्रकार से बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन वो बताते हैं जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बच्चों ने ना पूछा, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी जब आप शरीर छोड़ रहे थे? तो बाबा ने बताया, भोग में जब बच्चों ने पूछा, बच्चों ने, बच्ची अंत समय बहुत युद्ध चल रही थी, एक तरफ कर्म भोग शरीर के बचे हुए उसकी योग बहुत दर्द था, बहुत मतलब शरीर के अंदर ना बहुत पेन था, जैसे कर्म भोग अपनी अति चरम सीमा पर थे और दूसरी तरफ योग बल था। तो योग बल इतने समय जो कमाया योग, बाबा के टाइम तक तो बाबा ने 33 साल के बाद ही शरीर छोड़ दिया, 36 में ज्ञान में आए और 69 में शरीर, केवल 33 वर्ष के पुरुषार्थ में ही बाबा ने इतने 63 जन्मों के विकर्मों को भी भस्म करके इस जन्म के भी सारे वो करके संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो एक तरफ युद्ध चल रही थी, पहले तो कर्म भोग बहुत भारी था और योग बल हल्का था, लेकिन धीरे 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 योग बल भारी होता चला गया और कर्म भोग हल्का होता चला गया और बस बाद में योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल के चली गई सहजता से। और अंत समय में ना कोई भी और याद ना आए, ये है, क्योंकि अंत मते सोगति का गायन है, ये है इच्छा मृत्यु, ये है जो उसको वरदान था ना, किसको, भीष्म पितामह को, बस मैं जब चाहूं तब शरीर छोड़ू। अगर हमने ऐसे ही शरीर छोड़ दिया दुनिया की तरह है, तो हम में और दुनिया वालों में अंतर क्या रहा? ब्यूटी तो तब है हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, ब्रह्मा बाबा ने जैसे छोड़ा, हमने देखा खुद अपनी आंखों से 17 और 18 जनवरी को हम यहाँ पर थे, हमने देखा बाबा ने को कि बस जब कर्मातीत अवस्था का उस समय देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे और बस बाबा इतनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, मन जीते जगत जीत हो चुके थे कि बाबा दृष्टि देते थे और बस अंतिम दो दिनों में तो हमने ये महसूस किया, 6-7 बार बाबा से मिले, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देके कहते बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। पहले होता था हम प्रश्न बताया करते थे, बाबा समाधान देते थे, लेकिन अंतिम दो दिनों में एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा ने दृष्टि दी, मन में क्या संकल्प लेके आए हैं पहले वो संकल्प बता देते थे, फिर उसका उत्तर भी देते थे। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति, जो बाबा के प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखी, एक बार दो बार नहीं, 18 जनवरी की रात्रि क्लास बाबा अपनी अंतिम क्लास करा रहे थे, उस समय बाबा के सम्मुख हम भी बैठ के इसी हिस्ट्री हॉल में मुरली सुन रहे थे। बस सुनते सुनते हमारे मन में एक विचार आया, क्या विचार, भाई क्या ये अच्छा हो, तब तो हम भी यंग थे, 22-23 साल के थे, कि बाबा अगर बाबा मुझे मेरे प्रति कुछ कहे, मेरा मतलब नाम लेके, एक तो जनरल मुरली होती है, एक जब नाम लेके किसी का कहा जाता है तो वो उस व्यक्ति की एक पर्सनल जैसे प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बस संकल्प आने में देरी नहीं हुई और बाबा तो एकदम, कहते ना भक्त के मन में इच्छा हुई भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा तथास्तु, भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति मार्ग में यही तो गायन है सारे। तो संकल्प उठा, बाबा तक पहुंचा होगा और अगले सेकंड ही बाबा ने नाम लेके महावाक्य उच्चार दिए और वो आज तक भी 18 जनवरी की रात्रि क्लास में बाबा की अंतिम मुरली में वो बाबा की वॉइस में रिकॉर्डेड है। तो भाव क्या है कहने का, जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे तो हमारे सामने भी हमारी भक्त प्रजा होगी, बहुत इच्छाओं से आएगी, उस समय कहने सुनने का टाइम नहीं होगा, लेकिन हमारे ऐसी स्थिति हो कि हम उनके मन के भावों को जान सकें, उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकें और वो आत्माएं भी अनुभव करें कि हाँ मैं जिस जो इच्छा लेके आया था मेरी इच्छा पूर्ण हुई। वो पार्ट अब हम बच्चों को बजाना है, आप सबको बजाना है, जो ब्रह्मा बाबा ने हम सबके सामने पार्ट बजाया बाबा के सम्मुख जो भी 6-7 बार तो हम ही बाबा के पास उन दो दिनों में गए यहाँ पर 17 और 18 जनवरी को। तो ये ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था हमने अपनी आंखों से देखी है। तो एक ही बात बताई, ऐसे 5-6 लक्षण देखे बाबा के और बस बाबा गए। और ये मन जीते ही नहीं, मन जीतने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बाबा बने। तो प्रकृति माने ये शरीर 5 तत्वों का, अगर ये हमारा पवित्र नहीं हुआ और आत्मा पवित्र हो गई तो भी नहीं, प्रकृति को अगर हमने नहीं जीता तो भी हम माला का मणका नहीं बन सकते। तो मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनो। और वो बाबा का देखा कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, और 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई काला नहीं पड़ा, कोई शरीर में दुर्गंध नहीं आई। नहीं तो इतने घंटे 65 घंटे तक शरीर रखा रहे, कितनी दुर्गंध हो जाए। कोई इंजेक्शन लोशन नहीं लगाया गया बाबा का। और इस प्रकार से बाबा का, और ये है प्रकृति जीत का लक्षण। तो हमें भी बच्चों को प्रकृति जीत बनना है। और इस संदर्भ में मैं दादी जानकी का उदाहरण देना चाहूंगा कि 31 दिसंबर 1999 की बात है, पिछली सेंचुरी का लास्ट डे। 31 तारीख को हमेशा बाबा आते हैं, अव्यक्त बाप दादा। तो उस समय भी नीचे अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे मुरली चलाने के बाद। फिर दादी जी और निर्वैर भाई दादी बाबा के सम्मुख गए। दादी जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब थी, वो अहमदाबाद में लोटस में थी, आई नहीं सकते थे, यहाँ अभी नहीं आए, वहां तबीयत इतनी खराब। डॉक्टर ने भी बोल दिया, जवाब दे दिया, जिसको भी बुलाना हो बुला लो, अब कुछ नहीं हो सकता। विदेश से जयंती बहन भी आ गए थे और भी एक दो लोग। और एक दादी ने समाचार सुनाया, निर्वैर भाई ने सुनाया, तो बाबा ने सुना और बाबा ने कहा नहीं बच्ची कुछ नहीं होगा, दादी जानकी के लिए वो प्रकृति जीत आत्मा है, एक शब्द बोला। तो प्रकृति जीत आत्मा, देखो उस बात को आज 19 साल से ज्यादा हो गए, अभी भी देखो लंदन में बैठी हुई इतनी सेवा कर रही हैं, 103 साल के होकर भी, जितनी हम और आप लोग उनसे कितने साल छोटे हैं, हम लोग भी नहीं कर पाते। तो ये प्रकृति जीत और ये ब्रह्मा बाबा का हमने उस दिन देखा कि इस तरीके से सब होते भी बाबा के शरीर में कोई नहीं लगता था, बस जैसे सोए पड़े हैं। और हमेशा की तरह बाबा उठ के कहेंगे, जब जैसे बाबा का चित्र सामने लगाया हुआ है, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ आओ बच्चे, बस। और हम लोग बाबा की भावों में खींच करके एकदम जैसे मैग्नेट चुंबक खींच लेता है, उस तरह चले जाते थे। तो ये दोनों ही पवित्र होने चाहिए। बाबा ने तभी तो बोला है देवताओं के शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, दोनों पवित्र है, इसीलिए वो देवता उनको श्री तभी लगाते हैं। श्री वही लगा सकता है जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र। तो अभी ना तो किसी की आत्मा पवित्र है ना शरीर पवित्र है। तो इस तरीके से ये तो रेफरेंस आ गया बीच में। तो जो 6 शक्ति के बाद 7वीं जो ये शक्ति बता रहे थे, निर्भयता की, तो एक तो विकारों, ये विनाश की आग, दूसरी है विकारों की आग। जो भी विकार वगैरह ना हमारे अंदर रहे हुए होंगे, विकारों की आग अपनी तरफ खींच लगी। अभी तो हम समझते हैं, हमने ब्रह्मचर्य हो गए, पवित्रता धारण कर ली, काम विकार को जीत लिया। लेकिन अगर उसका अंश का वंश भी रहा हुआ होगा, भले कर्मणा में जीत लिया, लेकिन क्या आज हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने स्वप्न में और संकल्प में भी उसे जीत लिया है? अगर वहां पर भी थोड़ा अंश का वंश भी रह गया होगा, तो परिस्थिति अगर ऐसी आई, तुरंत वो आग पकड़ लेगी। तो विकारों की आग, इसका पेपर भी अंत होगा। तो विनाश की अग्नि, विकारों की अग्नि, तीसरी अग्नि है लगाव झुकाव किया। तो वो जिन भी आत्माओं के प्रति व्यक्ति वस्तु वैभव किन्हीं की तरफ भी अगर लगाव झुकाव रहा तो वो ही पेपर बन के हमारे सामने अंत में आएगा। और वो जब पेपर बन के आएगा तो हमारा बस। बस अंतिम 3 मिनट में पूरा करते हैं क्योंकि समय तो बहुत जंप कर लिया लेकिन शुरू भी लेट हुआ। तो ये 7वीं शक्ति का अंत में क्या बता रहे थे, लगाव झुकाव तीसरी, ये तीसरा है तीसरी प्रकार की, विनाश की अग्नि, विकारों की अग्नि और लगाव झुकाव की अग्नि। और ये है लगाव झुकाव की अग्नि से बचने का साधन, ये है बाबा ने कहा अपने आदि और अनादि वंश को याद करो। मैं आदि माने अनादि परम धाम आत्मा, तो परम धाम में हमारे क्या वो थे कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप मास्टर प्रेम स्वरूप शांति स्वरूप जो आत्मा के गुण है, और आदि स्वरूप जो सतयुग का जो देवी देवताओं का सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो जब इन स्वरूपों को याद करेंगे, दोनों ही पवित्रता के प्रतीक है, पवित्रता की चरम सीमा के, तो फिर लगाव और झुकाव कहीं पर भी होता है तो किसी न किसी प्रकार की अपवित्रता के कारण ही होता है। तो इस कारण से अगर उससे बचने का साधन यह है, जब भी कहीं पर भी लगाव झुकाव की कुछ भी बात महसूस हो अपने अंदर, तुरंत हम अपना आदि और अनादि स्वरूप स्मृति में ले आए तो इस अग्नि से बच जाएंगे। और चौथी प्रकार की अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। जो चीज अप्राप्त रहती है, असंतुष्टता जहां होती है वहां पर ही फिर पश्चाताप का कारण बन जाती है। अगर हम ये करते तो ऐसा हो जाता, ये नहीं किया तो ये हो गया आदि आदि, तो पश्चाताप की अग्नि न हो, सदा संपन्न रहे। जहां संपन्नता है वहां पर भी कहीं पर भी अप्राप्ति नहीं, जहां अप्राप्ति होती है वहीं पश्चाताप होता है। तो इसलिए अग्नि निर्भयता की और साथ ही साथ फिर वो शीतलता की शक्ति है। तो शीतलता का मतलब, क्योंकि देवी देवता देवियों का विशेष करके बताया, जहां एक तरफ ऐसा भयंकर विनाशकारी रूप भी बताया है, असुरों का विनाश किया ये मारा अस्त्र शस्त्र, दूसरी तरफ उनका ये भी बताया है क्या, शीतलता, आंखों में स्नेह झलकता हुआ, नयन चयन एकदम प्यार की साकार मूर्त, बिल्कुल जैसे दोनों रूप दिखाए हैं, एक तरफ शीतलता का भी एक तरफ अग्नि का विनाश का निर्भयता का स्वरूप। तो ये दोनों शक्तियों की वास्तव में अंत समय हम सब लोगों को, कोई शक्तियों की बात बहनों की ही नहीं है, पांडव भी हम भी शिव शक्तियां हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ हमारा भी कंबाइंड रूम होता है, तो हम भी शिव शक्तियां हैं। तो इसीलिए अपने को जब ऐसा समझेंगे तो फिर हम सब पेपर से पास होके पास विद ऑनर बनेंगे, संपूर्ण परिवर्तनता की शक्ति को धारण करके अल्टीमेटली विजयी होकर बाबा के साथ साथ चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सॉरी बहन जी से थोड़ा, हाँ क्योंकि शुरू हुआ तो इसलिए थोड़ा टाइम हुआ, किसी को जल्दी एकदम तो नहीं है ना, यहाँ पर तो सब फ्री होके आते हैं लेकिन फिर भी दिनचर्या को तो पालन करना ही होता है। अभी आप सबका थोड़ा रिफ्रेशमेंट होगा और फिर आके एक क्लास है, तो इसीलिए आज जो है चलिए आइए। ओम शांति, ओम शांति।